Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, Brahmananda Valli, presented by Swami Sri Vishwatmanandaji. Thank you. Om Namah Shivaya.
ब्रह्म का यदि ज्ञान होगा तो प्रमाण से ज्ञान होगा, जैसे फूल का ज्ञान, रंग का ज्ञान जो है आंख से होता है ऐसे। तो ब्रह्म के विषय में क्या प्रमाण है, तो इंद्रियां तो प्रमाण हो नहीं सकती हैं, क्योंकि वो तो संसार की वस्तुओं को, बाहर की वस्तुओं को ही दिखाती हैं। अच्छा, बुद्धि का जो विषय होगा तो वो भी संस्कार जन्य होगा, कोई भी ज्ञान बिना संस्कार के नहीं होता है, इसलिए बुद्धि का विषय भी नहीं हो सकता है। तो अब नारायण प्रत्यक्ष गया, प्रत्यक्ष चला गया तो अनुमान भी चला गया, उपमान भी चला गया, अर्थापत्ति भी चली गई, अनुपलब्ध, क्योंकि ये तो सब अनुमान के ही कच्चे बच्चे हैं। तो प्रत्यक्ष और अनुमान, ये दो प्रमाण चले गए, बचा कौन? तो बोले शब्द प्रमाण बच रहा। माने जिसने जाना है, यदि वो आपको कहे कि ऐसा जाना जाता है तो उसी की बात प्रमाण मानी जाएगी। और चूंकि आप स्वयं को ही जानना है, इसलिए इसमें बात जानने मानने मात्र से भी काम चल जाता है। एक तो होता है काम चलाना और एक होता है उसका अनुभव होना। जैसे एक सज्जन थे तो वो नाम जप करते थे, अब वो आ गए वेदांत के सत्संग में, तो अब उनको बड़ा अटपटा लगे। तो एक दिन उन्होंने पूछा कि क्यों जी, जब हम नाम जपते हैं और हमारा सब काम हो जाता है। मैंने कहा भाई क्या काम हो जाता है? बोले जो इच्छा हमारी होती है वो पूरी हो जाती है, जो संकल्प करते हैं वो संकल्प पूरा हो जाता है। तो फिर हम उस नाम को ही क्यों ना ब्रह्म माने? तो मैंने कहा आपको काम चलाना है या वस्तु को प्राप्त करना है? तो काम चलाना ये दूसरी बात है, ये ब्रह्म ज्ञान उन लोगों के लिए नहीं है नारायण जो काम चलाना चाहते हैं। काम चलाने के लिए तो आप कुछ भी, शास्त्र में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, कोई भी बात स्वीकार कर लो। जो यथार्थ का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए वेदांत शास्त्र है, इसी को शब्द प्रमाण बोलते हैं। शब्द माने शास्त्र का प्रमाण, शब्द रूप है शास्त्र। तो महाराज जी ने तो इसमें थोड़ा सा और बारीकी से बात बोली है, वो भी मैं सुना देता हूं आपको। वो कहते हैं वेदांत में शब्द को प्रमाण नहीं मानते, वेदांत में वाक्य को प्रमाण मानते हैं। जैसे शब्द तो हमने बोल दिया ब्रह्म, शब्द तो बोल दिया आत्मा, लेकिन ये प्रमाण नहीं है। जब हम कहेंगे अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है, ये हो गया वाक्य सेंटेंस, तो वो सेंटेंस का अर्थ होता है। शब्द का अर्थ तो वस्तु होती है, उसकी प्राप्ति नहीं होती है। सब अपने गुरुजी की बात बताते थे कि गुरुजी कहते थे काशी के पढ़ाने वाले, अरे अरे संतनु गिलसवा, गिलसवा माने गिलास, अरे संतनु गिलसवा, तो मैं खड़ा हाथ जोड़ के खड़ा हो जाऊं और कहूं कि महाराज गिलास लाऊं, कि गिलास को मांझूं, कि गिलास में पानी लाऊं। गिलास कहने से तो कुछ काम नहीं चलता, अब वाक्य तो पूरा करो। तो शब्द से ज्ञान नहीं होता है, वाक्य से ज्ञान होता है। अच्छा बोले तत्वमसी तो हम 40 साल से सुन रहे हैं, तुम वही ब्रह्म हो, तुम वही ब्रह्म, वाक्य तो है तो ज्ञान क्यों नहीं होता है? तो बोले वाक्य के अर्थ में बुद्धि परिणत नहीं होती है, इसलिए शब्द के मुकाबले में वाक्य प्रमाण है और वाक्य के मुकाबले में वाक्यार्थ प्रमाण है, अर्थाकार वृत्ति, और अर्थाकार वृत्ति के मुकाबले में मान लो आप ब्रह्म ब्रह्म रटो तो अर्थाकार वृत्ति तो हो रही है आपकी, लेकिन उससे ज्ञान नहीं होगा। मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, इसको दोहराओ तो अहंग्रह उपासना तो हो जाएगी, लेकिन उससे ज्ञान नहीं होगा। तो बोले ज्ञान कब होगा कि जब ब्रह्माकार वृत्ति का उदय होगा। अब ये फिर विषयांतर हो जाएगा, वो तो बहुत सी बातें आगे भी आने वाली हैं। तो शब्द नहीं वाक्य, वाक्य नहीं अर्थाकार वृत्ति, अर्थाकार वृत्ति नहीं ब्रह्माकार वृत्ति। ब्रह्माकार वृत्ति से क्या होगा कि अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी। मैं ब्रह्म नहीं हूं, ये जो दुराग्रह है नारायण, ये शांत हो जाएगा। तो अब शेष क्या रह जाएगा? बोले मैं ब्रह्म हूं, ये शेष रह जाएगा, यही ज्ञान है। किसी दीपक के ऊपर आप लोहे का कवर डाल दो तो अब दीपक का प्रकाश कैसे हो? तो बोले उसको कवर को गलाओ या कवर के ऊपर एक और दीपक जलाओ। नारायण, अरे कवर को हटा दो, दीपक का प्रकाश तो भीतर हो ही रहा है। तो ये जो आवरण है मिथ्या ज्ञान का, इस मिथ्या ज्ञान के आवरण को हटाना यही ब्रह्माकार वृत्ति का काम होता है। आप नहीं जानते क्या कि मैं हूं? आप नहीं जानते क्या कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं? आप नहीं जानते क्या कि मुझ में आनंद है, मेरे लिए सब प्रिय हैं, मैं किसी के लिए प्रिय नहीं हूं? इतना तो सब जानते हैं, लेकिन जब आती है कि मैं ब्रह्म हूं, तो ब्रह्म के बारे में जो कुछ भी परिकल्पना है हमारी, उसके अनुसार जब अर्थ लगाते हैं तो ये स्वीकार नहीं होती है कि मैं ब्रह्म हूं। तो मैं ब्रह्म नहीं हूं, ये जो आवरण हो गया है, और नहीं को ही जो मैंने अपना स्वरूप मान लिया है, शरीर ब्रह्म नहीं है लेकिन इसको मैं ब्रह्म मानता हूं, अंतःकरण ब्रह्म नहीं है, अंतःकरण को मैं ब्रह्म मानता हूं। अभी इस पर मत जाना बुद्धि के सब ब्रह्म है। ये मधुसूदन सरस्वती जी महाराज ने लिखा है गीता भाष्य में कि अगर किसी को ब्रह्म ज्ञान का कोई अधिकारी नहीं है, मान लो उपासना का अधिकारी है या और किसी कर्म का अधिकारी है, और उसे आप ये समझाने लगो कि सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, तो आप उसका हित नहीं करते हो, आप उसका अहित करते हो। क्योंकि सब ब्रह्म है तो छोड़ेगा किसको वो, और जब छोड़ना नहीं होगा तो पकड़ेगा किसको? जो पहले से पकड़ा हुआ है उसी को पकड़े रहेगा, तो उसका तो आप त्याग वैराग्य सब नष्ट कर दोगे। तो ये सब ब्रह्म है, ये जब वैराग्य हो जाता है कि सब ब्रह्म नहीं है इसलिए ये मुझे सब नहीं चाहिए, तो ये तो अनुभव का फल है कि सब ब्रह्म है, ये शुरू में लेने वाली चीज नहीं है। तो शरीर ब्रह्म नहीं है, प्राण ब्रह्म नहीं है, मन ब्रह्म नहीं है, बुद्धि ब्रह्म नहीं है। जो जो ब्रह्म नहीं है उसको नहीं स्वीकार करे, यही आवरण भंग करने का ढंग है। तो नारायण ब्रह्माकार वृत्ति का उदय हो जाएगा तो ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। इसलिए वेदन में कोई क्रिया अपेक्षित नहीं है, ये बात बताना भाष्यकार का मतलब है। अब पूर्व पक्षी फिर शंका करता है कि महाराज फिर तो ये वाक्य ही बेकार हो जाएगा, ब्रह्म वेत्ता ब्रह्म को प्राप्त करता है, तो ब्रह्म वेत्ता प्राप्त करने वाला हुआ, ब्रह्म को प्राप्त करता है तो ये प्राप्तव्य हो गया, और प्राप्त करता है ये उसका फल हो गया। तो जब ब्रह्म ही नहीं रहा, प्राप्तव्य ही नहीं रहा, प्राप्त करने वाला ही अलग से कुछ नहीं रहा, तो किसकी किसकी प्राप्ति होगी, ये शंका उदय होती है। तो इसका भी समाधान भाष्यकार ने किया है। उन्होंने तो संक्षेप से दे दिया, दशमस्त्वमसि का ज्ञान जैसे होता है ऐसे ही ब्रह्म का ज्ञान होता है। ऐसा था, एक कथा है, बनाई गई है कथा तो, लेकिन दृष्टांत तो समझाने के लिए होता है। बोले 10 आदमी थे और वो तीर्थ यात्रा के लिए चले। अब रास्ते में पड़ी नदी, पहले तो सब पैदल ही जाते थे, तो नदी को तैर करके पार करना था, ज्यादा पानी तो नहीं था लेकिन तैरना तो था। थे वो सबके सब मूर्ख बेपढ़े लिखे, तो गिनती भी ठीक तरह से नहीं जानते थे। जब पल्ली पार पहुंच गए सब तैर करके, तो बोले भाई गिन लो, कहीं ऐसा ना हो कोई बह गया हो। तो अब एक लाल बुझक्कड़ थे उनमें हमारे थोड़ा ज्यादा जानते थे, बोले भाई तू सबसे ज्यादा जानता तू गिन। अब उसने के लिए 9 को तो गिन लिया जो सामने खड़े थे, अपने को गिनना भूल गया हो। तो बोला भैया 10वां बह गया, 9 ही। अब जो नंबर 2 के लाल बुझक्कड़ थे और तो उन्होंने कहा कि तू हट मैं गिनता हूं। उसने भी वही गलती की, सामने वाले तो 9 गिन लिए, अपने को फिर भूल गया। सबने 9-9 गिने नारायण और अपने को सब भूल गए, तो रोने लगे कि हाय मेरा 10वां, हाय मेरा 10वां, रोने लगे। एक महात्मा उधर से निकले, अरे भाई क्यों रो रहे हो तुम लोग, बताया महाराज 10वां बह गया। महात्मा ने देखा कि 10 के 10 तो खड़े हैं यहां पे। तो बोले अच्छा कैसे मालूम है कि 10वां बह गया। बोले हमारे इन्होंने गिना, इसने गिना, इसने गिना। बोले मेरे सामने गिनो। अब एक ने मेरे उनके सामने गिना तो वो समझ गए कि अपने को नहीं गिनता है, बाकी सबको गिनता है। तो बोला देखो रोना बंद करो, 10वां तुम लोगों के बीच में ही है। बोले अच्छा ऐसी बात है कि हां, तो रोना बंद हो गया उनका। अब बोले बताओ कहां है वो 10वां। तो सर्कल में खड़ा कर दिया उन्हें गोलाई में। अब जहां से गिनोगे वहीं पे अंत हो जाएगा। तो एक से गिनती शुरू की और आखिर पर जब आए तो बोले ये है 10वां, तू है 10वां। एक तमाचा मारा उसके ना। ऐसे ही फिर दूसरे से गिना, बोले तू है 10वां। ऐसे ही 10वों से गिना और 10 पे आकर समाप्त तो हो गए। तो प्रत्येक 10वां था वहां, लेकिन भ्रम यह हो रहा था कि 10वां बह गया। गलती कहां हो रही थी कि 9 गिनते थे, अपने को नहीं गिनते थे। ऐसे ही ये सब ब्रह्म है, ये तो बात ठीक है, लेकिन जब तक अपने को न गिनो कि मैं ब्रह्म हूं, तब तक सब में 10 में बुद्धि होती नहीं है। यही होती है, हमें तो कहीं ब्रह्म छिपा हुआ है, प्राप्त करना है, उल्टे लटकेंगे तब ब्रह्म का ज्ञान होगा नारायण। एक हंसी की बात याद आ गई, महाराज जी की सुनाई हुई बातें हैं सब। तो बोले कि एक कुंभ लगा तो एक महात्मा ने ढिंडोरी पीटी कि मैं भगवान का दर्शन कराऊंगा। अब भीड़ इकट्ठी हो गई तो पेड़ पर चढ़ गए महात्मा। उन्होंने कहा कि कराओ दर्शन। बोले कि नाक कटवानी पड़ेगी। बोले क्यों, कि दर्शन तो आंख से होगा ना, अब आंख के बीच में ये नाक आ रही है तो इसलिए वो ब्रह्म का दर्शन नहीं हो रहा है, ईश्वर का दर्शन नहीं हो रहा। अब सब भाग गए वहां से, नाक अपनी कौन कटवावे। अब एक बच गया नारायण पीछे, तो उसने कहा महाराज कटवा दो मेरी नाक। तो नाक कट गई इसकी, तो तो बोले मुझे तो अब भी दर्शन नहीं हुआ। बोले चुप रहे, अब तो कट गई अब कट गई, अब तू भी यही कह के नाक कटवाओगे तो दर्शन होगा, और नाक नहीं कटवाओगे तो दर्शन नहीं होगा। ऐसे ही कोई कहता है हठ योग की समाधि लगाओ तब ब्रह्म दर्शन होगा, कोई कहता है उल्टे लटको आसन प्राणायाम करो तब जो है दर्शन होगा, कोई कहता है ऐसे भाव में तन्मय हो जाओ तब दर्शन होगा, कोई कुछ कह, जैसे जैसे जिसका भाव है। अरे जो हाजिर हजूर है सामने, जो सब रूप में मौजूद है, वो इस क्यों नहीं दिख रहा है? इसलिए कि अपने को हम उसमें शामिल नहीं करते। तो अब दो फल हुए उसके महात्मा के बताने के, एक तो वो जो सब रो रहे थे उनका रोना बंद हो गया। तो रोना तो इतने से ही बंद हो गया कि दसवां तुम्हारे बीच में ही मौजूद है। इसलिए शास्त्र जब कहता है कि परमात्मा है, ब्रह्म है, भगवान है, तो आपको श्रद्धा विश्वास होता है, तो आप कहते भगवान हमारी रक्षा करेगा, आपका रोना जो है इसको परोक्ष ज्ञान बोलते हैं। तो एक फल तो होता है परोक्ष ज्ञान का, और जब गुरु के द्वारा ये ज्ञान होता है कि तू ही ब्रह्म है, तत्त्वमसि, वह परमात्मा ब्रह्म तुम ही हो, तुम का मतलब ये व्यक्ति मत समझ लेना नारायण, ये तो फिर विवेक कराना पड़ता है कि तुम का क्या मतलब है, वह का क्या मतलब है। तो बोले जब ये ज्ञान कराते हैं कि तुम ही हो, तब एकदम उसको होता है कि हाँ 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 मैं भी हूं और ये भी सब ब्रह्म में ही है ना। अपने को ब्रह्म जान लो तो सब ब्रह्म है, और अपने को ब्रह्म ना जाना और सबको ब्रह्म जाना तो उसको परोक्ष ज्ञान कहते हैं। उससे शांति तो आपको थोड़ी सी मिल जाएगी, कभी अविश्वास होने लगेगा तो रोना भी आ जाएगा नारायण। और अगर अपने को जान गए तो फिर इसको अपरोक्ष ज्ञान बोलते हैं, साक्षात अपरोक्ष। तो ये भाष्यकार ने संक्षेप से ये उसमें भाष्य में दिया है कि प्रमाण से जो ज्ञान होता है वो ऐसे ही होता है जैसे कि दशमस्त्वमसि से होता है, वह दसवां तू है। ऐसे ही श्रुति जब कहती है कि ब्रह्म है तो ये तो परोक्ष ज्ञान है, और जब कहती है कि वह ब्रह्म तू है तो ये अपरोक्ष ज्ञान है। ये ज्ञान उत्पन्न होते ही ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, फिर और कुछ की जरूरत नहीं रहती। ब्रह्मविद आपनोति परम तदेशाभ्युक्ता। अब कहो कि भाई उस ब्रह्म का क्या लक्षण है? लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि न तु प्रतिज्ञा वाक्य न। लक्षण और प्रमाण से वस्तु की सिद्धि होती है, खाली चाहे जिसको ब्रह्म बोल तो प्रतिज्ञा कर लो नारायण, तो ऐसा नहीं होता है। लक्षण प्रमाण बताओ उसमें। तो कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अब ये ब्रह्म का लक्षण बताते हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तीन चीजें जिसमें हो उसको ही तुम ब्रह्म समझ लेना। एक तो वो सत्य होना चाहिए, एक ज्ञान स्वरूप होना चाहिए, और एक अनंत होना चाहिए। यहां आनंद शब्द मूल श्रुति में यहां पे नहीं दिया है, तैतरीय श्रुति में तो कई जगह है, आनंदम ब्रह्म विजा आनंदो ब्रह्म इति विजानात आनंदाध्येव खल विमान भूतानि जायन्ते। तो वो तो कई जगह पे है, दोनों श्रुतियां हैं आनंदो ब्रह्म इति विजानात, ये तो तैतरीय में है, और आनंदम ब्रह्म ये बृहदारण्यक की श्रुति है। तो ब्रह्म में आनंद है कि ब्रह्म का आनंद है कि आनंद ब्रह्म है नारायण। तो ब्रह्म और आनंद दो वस्तुएं नहीं है। अब विभक्ति तो विवक्षा के अनुसार लगानी पड़ती है ना, व्याकरण के नियमों के अनुसार। तो अर्थ दोनों का एक ही है, आनंदो ब्रह्म इति व्यजाना, तो आनंद ब्रह्म है ऐसा उसने जाना। और आनंदम ब्रह्म, आनंद ही ब्रह्म है। तो अब इनके लक्षणों पर जरा विचार करो। सत्य किसको कहते हैं? तो भाष्यकार की जो परिभाषा है, वैसे तो आप कुछ न कुछ बोलोगे अपने मन में कि सत्य किसे कहते हैं। बोले जो जो व्यवहार में मालूम पड़े कि है उसको सत्य बोलते हैं, और फूल दिख रहा है हमको व्यवहार में इसको भी सत्य बोलते हैं। तो एक होता है सत्य और एक होता है रित। उपनिषदों में दोनों शब्दों का प्रयोग है। अब शांति पाठ में बोलते ही हो सत्यम वदिष्यामि ऋतम वदिष्यामि नारायण, तो सत्य भी और ऋत भी दोनों का अर्थ सत्य ही है। तो एक व्यावहारिक सत्य है और एक पारमार्थिक सत्य है। तो जैसे फूल है तो फूल को भी हम सत्य बोलते हैं, तो व्यावहारिक सत्य है ये, इसलिए इसको सत्य बोलते हैं। और परमात्मा भी सत्य है, आत्मा भी सत्य है, तो उसको भी सत्य बोलते हैं। तो भाष्यकार ने ये अंतर किया कि जो व्यावहारिक सत्य है उसको सत्य बोलेंगे वहां जहां पर दोनों शब्दों का एक साथ प्रयोग है, और जो रित है वो पारमार्थिक सत्य है। लेकिन यहां सत्यम की परिभाषा भाष्यकार ने दी है कि जिसका जो स्वरूप निश्चय हो, यदि उस स्वरूप से उसका व्यभिचार न हो, स्खलन न हो, माने वही स्वरूप उसका बना रहे, तो उस वस्तु को सत्य बोलते हैं। जैसे मान लो आपने अंधेरा है तो सामने देखा सांप पड़ा हुआ है, थी तो रस्सी, मालूम पड़ा कि सांप है, तो आपने निश्चय कर लिया कि सांप है। अब थोड़ी देर में लाइट आ गई, प्रकाश हो गया, तो क्या मालूम पड़ा कि रस्सी है। तो पहले क्या स्वरूप निश्चय किया था? सांप है। बाद में क्या निश्चय किया? रस्सी है। तो पहला जो स्वरूप निश्चय किया था उसका निषेध हो गया, मिथ्या हो गया वो। तो मिथ्या ज्ञान को तो बोलते हैं असत्य। और जिस ज्ञान का निषेध ना हो सके किसी भी हालत में, उसको बोलते हैं सत्य। जिसका जो स्वरूप निश्चय किया जाए, यदि उसका व्यभिचार नहीं होता है, तो वो सत्य कहलाती है। अच्छा, एक तो घड़ा है, शब्द है, और घड़ा क्या है? गोल मटोल मिट्टी का बना हुआ। तो वो गोल पेट वाला जो घड़ा है, और ये घड़े का नाम रूप हुआ, घट उसका नाम हो गया, ये उसका गोल मटोल उसका रूप हो गया, नाम और रूप हो गए। अब इसमें सच्ची क्या चीज है? मिट्टी सच्ची है कि नाम रूप सच्चे हैं? मिट्टी सच्ची है। तो जो उपादान कारण होता है वो तो सत्य होता है, और उपादान कारण में जो भी चीज आरोपित होती है वो सब मिथ्या ही होती है। अब जैसे ये शरीर है और ये इन इधर के मेरे दाई ओर जो बैठी हैं महिलाएं नारायण, इनके शरीर हैं, तो दोनों के शरीरों में क्या अंतर है? बोले पंचभूत इसमें भी है, पंचभूत इसमें भी है, लेकिन नाम रूप का ही तो अंतर है ना। उपादान क्या है दोनों का? उपादान तो पंचभूत ही है। तो पंचभूतों का निषेध नहीं हो सकता है, नाम रूप का निषेध हो जाएगा। अरे पहले हम लोग छोटे थे ना, तो बच्चे रोते थे, तो माताएं जो हैं आटे बहलाने के लिए उनको आटे को बोले ले जरा सा यूं गोल करके लो बॉल ले लो, बॉल ले ली, फिर रोने लगा वो, तो उस पर से वही बॉल ले ली और उसे लेकर उसकी चिड़िया बना दी, बोले ले चिड़िया ले ले। अब आटा उतना ही है, अब पहले बॉल थी नारायण, अब वो जो है चिड़िया हो गई। तो जो उपादान कारण है वो तो उतना ही, जितनी जितना वो आटा है उतना ही रहा, लेकिन उसमें आकृति भेद हो गया। तो श्रुति ने क्या कहा, वाचा रमणम विकारो नाम धेयम मृत्यु केत्येव सत्यम। मिट्टी ही असल में सत्य है और ये नाम रूप वाली जो है ये तो वाचारम्भण है, शब्दों का जाल है। कोई किसी भाषा से बोलता है, कोई किसी भाषा से बोलता है, कोई किसी भाषा से। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।